कुञ्जविहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन ब्रज जन रञ्जन दान यशोदानन्दन ब्रज जन रञ्जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे जय जय राधा मदन मोहन ललिता देवी राधा मदन मोहन ललिता देवी जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर श्री हरि नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत स्कंद चौथा अध्याय 28वां श्लोक 18वां। मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। लोकांतरम गतवती मय्यनाथा कुटुंबिनी वर्तिष्यते कथं त्वेषा बालकान अनुशोचति। लोकांतरं गतवती मय्यनाथा कुटुंबिनी वर्तिष्यते कथं त्वेषा बालकान अनुशोचति। लोकांतरं गतवती मय्यनाथा कुटुंबिनी वर्तिष्यते कथं त्वेषा बालकान अनुशोचति। लोकांतरं गतवती मय्यनाथा कुटुंबिनी वर्तिष्यते कथं त्वेषा बालकाननुशोचति। लोकांतरं गतवती मय्यनाथा कुटुंबिनी वर्तिष्यते कथं त्वेषा बालकाननुशोचति। लोकांतरं गतवती मय्यनाथा कुटुंबिनी वर्तिष्यते कथं त्वेषा बालकाननुशोचति। शब्दार्थ, लोकांतरम अन्य जीवन में गतवती मई मेरे चले जाने पर अनाथा पति विहीन कुटुंबिनी अपने परिवार से घिरी वर्तिष्यते रहेगी कथम कैसे तू तब एषा यह स्त्री बालकान बच्चों को अनुशोचती विलाप करती हुई। अर्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। राजा पुरंजन अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगा, हाय मेरी पत्नी इतने सारे बच्चों से परेशान होगी, जब मैं यह शरीर छोड़ दूंगा तो यह किस प्रकार परिवार के इन सभी सदस्यों का पालन करेगी। हाय वह परिवार पालन के विचार से अत्यधिक कष्ट पाएगी। श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान की जय। गौरंग महाप्रभु की जय। तात्पर्य, अपनी पत्नी के विषय में उसके इतने सारे विचार यह सूचित करते हैं कि राजा स्त्री के विचार में कितना निमग्न था। सामान्यतः पतिपरायण स्त्री अत्यंत आज्ञाकारिणी पत्नी होती है। इससे पति अपनी पत्नी के प्रति आकृष्ट होता है और मृत्यु के समय वह अपनी पत्नी के विषय में बहुत अधिक सोचता है। यह अत्यंत खतरनाक स्थिति है, जैसा कि राजा पुरंजन के जीवन से स्पष्ट है। यदि मृत्यु के समय कोई भगवान श्री कृष्ण के बजाय अपनी स्त्री के विषय में सोचता है तो वह निश्चय है कि श्री भगवान के धाम वो निश्चय ही श्री भगवान के धाम वापस नहीं जा सकता, अपितु उसे स्त्री का शरीर धारण करके भौतिक जीवन का नया प्रकरण आरंभ करना पड़ता है। हमें 18 से 22 तक श्लोक दिए गए हैं, तो आगे के श्लोकों का केवल अर्थ पढ़ते हैं और तात्पर्य के विषय में चर्चा करते हैं। श्लोक 19वां। तब राजा पुरंजन अपनी पत्नी के साथ अपने पुराने व्यवहारों के विषय में सोचने लगा। उसे याद आया कि उसकी पत्नी तब तक भोजन नहीं करती थी जब तक वह स्वयं खा नहीं लेता था। वह तब तक नहीं नहाती थी जब तक वह नहीं नहा लेता था, और वह उस पर सदा इतनी अधिक अनुरक्त थी कि यदि वह कभी झिड़क देता था और उस पर नाराज हो जाता था तो वह मौन रहकर उसके दुर्व्यवहार को सह लेती थी। श्लोक 20वां। राजा पुरंजन सोचता रहा कि उसके मोहग्रस्त होने पर किस तरह उसकी पत्नी उसे अच्छी सलाह देती थी और उसके घर से बाहर चले जाने पर वह कितनी दुखी हो जाती थी। यद्यपि वह उनके पुत्रों एवं वीरों की माता थी तो भी राजा को डर था कि वह गृहस्थी का भार नहीं ढो सकती। 21वां श्लोक। राजा पुरंजन आगे भी चिंता करने लगा, जब मैं इस संसार से चला जाऊंगा तो मेरे ऊपर पूर्णतः आश्रित पुत्र तथा पुत्रियां किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करेंगे। उनकी स्थिति जहाज में चढ़े हुए उन यात्रियों के समान है जिनका जहाज सागर के बीच में ही टूट जाता है। श्लोक 22वां। यद्यपि राजा पुरंजन को अपनी पत्नी तथा बच्चों के भाग्य के विषय में शोक नहीं करना चाहिए था, फिर भी उसने अपनी दीन बुद्धि के कारण ऐसा किया। उसी समय भय नामक यवनराज उसे बंदी बनाने हेतु तुरंत निकट आ धमका। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपना कीमती समय निकालकर आज इस रविवार भागवतम क्लास में आए। तो प्रथमतः मैं आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दिवाली का पर्व कल से चालू हो गया है और ये हमारा भी परम सौभाग्य है कि इस पावन तिथि पे हमें भगवान के बारे में चर्चा करने का एक अवसर मिला। प्रभु जी को विशेष धन्यवाद। तो आप में से प्रभु जी सबको पता ही रहेगा, अभी हम पुरंजन की कथा सुन रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इस कथा में थोड़ा सा पहले का हम पढ़ लेते हैं या थोड़ा चर्चा करते हैं, उसके बाद टॉपिक पे जाएंगे। तो किंग एक प्राचीनी बरीशी, मतलब प्राचीनी बरी नाम के एक राजा होते हैं, और वे कर्मकांडिक एक्टिविटी माने कर्मकांड जो रहते हैं, यज्ञ आदि, जो कि भगवान से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, परंतु अपने एक फल की अपेक्षा करते हुए किए जाने वाले कार्य, ऐसे जो कर्मकांड कार्य है या यज्ञ है, उसमें ज्यादा ही वो इन्वॉल्व रहते हैं। बहुत ही ज्यादा प्रमाण पे वे यज्ञ करते रहते हैं, और उनको प्रचार करने के लिए या उनको भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए श्री शिला नारद मुनि वहां पे अवतरित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, और वे उनको मार्गदर्शन करते हैं कि किस प्रकार जीवन का उद्देश्य क्या है। तो उसमें एक नारद मुनि जी का एक सेंटेंस है, वो मैं पढ़ के दिखाता हूँ। चीफ एम ऑफ लाइफ इज टू गेट रीड ऑफ ऑल मिजरीज एंड एंजॉय हैप्पीनेस, बट दीज टू थिंग्स कैन नॉट बी रियलाइज्ड बाय फ्रुटिटिव एक्टिविटीज। क्योंकि प्राचीनी बरी महाराज फ्रुटिटिव एक्टिविटी, कर्मकांडिक एक्टिविटी में बहुत ही ज्यादा एनग्रॉस हो चुके थे, तो उनको इससे बाहर निकालने के लिए और उनके द्वारा हम सभी को, विशेष रूप से गृहस्थों को संदेश देने के लिए नारद मुनि यह वाक्य कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य है कि जो भवताप है, थ्री टाइप्स ऑफ मिजरीज है, या जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, इससे बाहर निकलना और रियल हैप्पीनेस जो है कि भगवान की सेवा का जो आनंद है वह पाना है। परंतु ये दोनों चीजें अगर हम केवल कर्मकांडिक एक्टिविटी करते रहे तो नहीं मिल पाएंगे, हमको ये करने के लिए भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। तो यह बताने के लिए, परंतु वे पुरंजन की जो एक कथा है, एलोगेरिकल कथा माने काल्पनिक कथा है, उन्होंने स्वयं बताई है, तो यह कथा बताते हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार नारद मुनि भागवतम में अनेकों अनेकों स्थानों पर बहुत से लोगों को भक्त बनाते हैं या उनको भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। ध्रुव महाराज की कथा है, प्रहलाद महाराज की कथा है, लगभग सभी महत्वपूर्ण कथाओं में नारद मुनि एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है कि जो ये सभी जो महाभागवत लोग हैं उनको भी भक्ति का मार्ग बताते हैं। तो इस प्रकार अनेकों जनों के वे गुरु हैं। तो उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद, इन्होंने भी भक्ति का मार्ग बहुत से लोगों को दिखाया है। कलयुग में, अभी के समय में हमने देखा कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने भी अनेकों अनेकों जगह पर जाकर प्रचार किया भगवान के नाम का और लोगों को भक्ति दी। तो अंडरस्टैंडिंग द ग्रेट क्वालिटीज ऑफ प्रीचर्स, तो ये जो प्रीचर्स हैं, जो प्रचार करने वाले भक्त हैं, तो इनके कुछ क्वालिटीज हैं जो हम देख सकते हैं किस प्रकार नारद मुनि में भी है, श्रील प्रभुपाद में भी है, और अभी जो भक्त प्रचार कर रहे हैं उनमें भी यह क्वालिटीज हमको देखने को मिलती है। तो पहली क्वालिटी है सेल्फलेसनेस एंड प्राइडलेसनेस। अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार नारद मुनि कहीं पे भी, अभी जहाँ जरूरत है, आवश्यकता है, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। हाँ, अभी प्रचनी भरी महाराज ने उनको आमंत्रण दे के बुलाया नहीं था कि आइए और हमें थोड़ा बताइए, नहीं, परंतु उनको पता चला कि अरे ये व्यक्ति मार्ग से भटक रहा है, भले कि वे बहुत ही अच्छे लिनेज में जन्म लिए हुए हैं, राजा है, परंतु वे जो भगवान का भक्ति जिस प्रकार करना चाहिए था उस प्रकार नहीं कर पा रहे थे। तो तुरंत नारद मुनि वहां पे प्रकट हो गए और उन्होंने प्रचार करना चालू किया। दूसरा प्राइडलेसनेस, और उनको ऐसा अपेक्षा नहीं है कि मुझे, मैं आया तो मेरा इस प्रकार स्वागत होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी हम यही देखते हैं। श्रील प्रभुपाद को अमेरिका में किसी ने बुलाया नहीं था, वे उनके उम्र उम्र के 70वें साल, 65वें साल, इतना लेट वे अमेरिका चले गए, किसके लिए? भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए। वहां पे उनका स्वागत करने के लिए कोई गार्लैंड लेके खड़ा नहीं था कि आइए स्वामी जी, आप आए हमारे शहर में, हमारे देश में प्रचार कीजिए। नहीं, उनको तो बोस्टन में जब भी उतरे तो उनको लेफ्ट दाहिनी ओर जाना है या लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, वो भी पता नहीं था, परंतु वे गए। तो इनका ये जो सेल्फलेसनेस है, माने निस्वार्थ सेवा भाव और प्राइडलेसनेस, अभी इतने बड़े स्वामी जी है, सन्यासी है, आज एखादा व्यक्ति गृहस्थ भी होता है, इनिशिएटेड ड्यूटी भी होता है, तो उसको लगता है तो मैं किधर जाता हूँ तो मुझे प्रभु जी तो बोलना चाहिए, मतलब पहचान तो होने, मुझे पहचानना तो चाहिए, इतना एक्सपेक्टेशन रहता है सिंपल। परंतु श्रील प्रभुपाद जी जो कि सन्यासी थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के डिसाइपल थे, सेनापति भक्त थे, और इतने साल वे वृंदावन में रह चुके थे, भागवतम का ट्रांसलेशन कर चुके थे, परंतु वे जब अमेरिका में गए तो वे इतने लगभग एकदम गरीब की तरह वे रहे, दूसरे के घर में रहे, वहाँ पे सभी स्टैंडर्ड, उनके जो ब्राह्मणिकल स्टैंडर्ड और उसके भी ऊपर सन्यासी के स्टैंडर्ड, ये होने के बावजूद वे एक गृहस्थ के घर में रहे जहाँ पे कि शुद्ध शाकाहारी भी वे नहीं थे लोग। तो इतना डाउन टू अर्थ, मतलब जमीन, हम क्या बोल सकते, इतना विनम्रता श्रील प्रभुपाद के पास था। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार ये जो प्रचारक भक्त है, ये इनमें ये क्वालिटी देखने को मिलती है, एक तो सेल्फलेसनेस कि वे निस्वार्थी होते हैं, और दूसरा प्राइडलेसनेस कि वे उनको अभिमान नहीं रहता है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरा उनका गुण है कि कंपैशन, कि दूसरे के ऊपर उनको दया आती है, उनके ऊपर करुणा आती है, क्योंकि भौतिक जगत में जो व्यक्ति जो एक कर्मकांड की एक्टिविटी, जैसे प्रचिनी भरी महाराज थे, वो समय में तो फिर भी अच्छे थे, केवल वो भगवान के माने अलग अलग देवी देवताओं के या इसके लिए यज्ञ करते थे, तो वो भी भक्ति नहीं है, प्योर डिवोशन नहीं है। तो उसी के लिए भी उनको झापने के लिए या समझाने के लिए नारद मुनि आ गए। परंतु आज के समय में सभी लोग उससे भी गए गुजरे हो चुके हैं कि सभी चारों प्रकार के जो नियम हैं, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, ये चीज़ों में लगे हुए हैं, फुल टाइम बिजी, विशेष करके पाश्चात्य देश, वहाँ पे तो ये सब चीज़ें फ्रीली अवेलेबल है, और लोगों को उसका उसमें कुछ गलत भी नहीं लगता है, और वही संस्कृति का पालन अभी अपने भारत देश में भी आ रहा है, भारत के लोग भी उसका अनुकरण कर रहे हैं। तो आज के समय में तो नारद मुनि तो चकरा जाएंगे कि ऐसे लोग हैं, इनको क्या बताऊं, ये यज्ञ करने वाले को वो झापते थे कि अरे क्या तू यज्ञ करते बैठा है, तो अभी हमको क्या बताएंगे वो। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद आए, वो तो और भी कंपैशनेट है, और भी वो दयालु है कि उन्होंने सोचा कि नहीं, इनको भी भगवान के भक्ति का मार्ग दिखाएंगे। भक्तों का एक गुण है कि पर दुख दुखी, दूसरे के जीवन में जो दुख देखते हैं तो उनको भी दुख होता है, तो प्रीचर को तो ये क्वालिटी बहुत ज़रूरी है कि उसको दूसरे का दुख देख के दुख होना चाहिए, और उसके लिए अंदर से भावना आनी चाहिए कि अरे मैं इनके लिए कुछ करूं। तो यह श्रील प्रभुपाद जी का और नारद मुनि जी का भी गुणधर्म है कि वे दोनों भी बहुत ही कंपैशनेट थे। उन्होंने प्राचीनी बरी महाराज के लिए नारद मुनि प्रकट हो गए, और हमारे लिए श्रील प्रभुपाद आए, और उन्होंने हमारा जो खराब स्थिति था उसके ऊपर दया कर हमको प्रचार किया और भक्ति में लाया। फिर तीसरा गुणधर्म है फियरलेस इन रिवीलिंग द ट्रूथ। अभी प्रचार करते समय आज हम देखते हैं कि डिवोटीज को भी थोड़ा डिफिकल्ट जाता है लोगों को बोलना कि आप ये सब छोड़ दो, नॉनवेज छोड़ दो, अपने विभाग में भी नॉनवेज छोड़ दो बोलना बहुत बड़ी बात है, कांदा लहसुन तो और आगे, और इलिसिट सेक्स, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, ये सब चीज़ों को डायरेक्टली बोलना कि आप ये सब चीज़ें छोड़ दो बहुत कठिन है, परंतु ये जो प्रीचर है वो फियरलेस रहते हैं, उनको डर नहीं लगता है कि अरे क्या होगा, क्योंकि वे उनका हृदय शुद्ध है और वे स्वयं के जीवन में इन चीज़ों का पालन कर रहे हैं, तो नैसर्गिक रूप से सामने वाला व्यक्ति उससे पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होता है, उनको ऐसा नहीं लगता है कि ये गलत है या हिपोक्रेट है या ये मेर, उनका ईगो भी हर्ट नहीं होता है। अभी कितने सारे प्रभुपाद के शिष्य है, उनको प्रभुपाद ने भी बहुत बुरी तरह से झापा है या ये किया है, परंतु उनको वो, उनके लिए वो ट्रेजर है, उनको वो यादगार है, और वो कहते आनंद से कहते कि उसकी वजह से मैं आज स्थिति में, अच्छी स्थिति में। इवन श्रीला प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि उनको अच्छा लगा जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको डिफीट किया, उनका जो फ्रीडम का जो ये था आर्गुमेंट था उसके लिए। तो उसी प्रकार नारद मुनि प्रचिनी भरी महाराज को डायरेक्टली बोलते हैं कि आप ये जो कर रहे हैं वो यूजलेस है। हालांकि उसको और समझाने के लिए आगे वो पुरंजन का कथा कहते हैं, परंतु इन वन सेंस श्रील प्रभुपाद और नारद मुनि और सभी प्रीचर्स ये फियरलेस होते हैं, जो सत्य है वे बताते हैं, भले उसको थोड़ा सा डाइजेस्टेबल बना के देते हैं, परंतु सत्य को कभी छुपाते नहीं। श्रील प्रभुपाद जी को बताया कि श्रील प्रभुपाद आप केवल चार नियमों से केवल एक को थोड़ा साइड में रखो तो भी आपके बहुत से शिष्य हो जाएंगे। प्रभुपाद बोले नहीं, चार नियम है, चार ही नियम रहेंगे शास्त्र से। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और इवन कृष्णा कॉन्शियसनेस, उनको ये भी किसी ने कहा कि आप इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस बताएंगे तो थोड़ा लिबरल होगा, ज्यादा लोग को अट्रैक्ट हो जाएंगे। प्रभुपाद बोले नहीं, गॉड का मतलब क्या है, हु इज गॉड, कृष्णा इज गॉड, तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इस प्रकार जो भगवान के भक्त है, जो प्रचारक है, वे फियरलेस होते हैं। और एक क्वालिटी है उनका, एक्सपर्ट इन प्रीचिंग कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स इन सिंपल वे। क्योंकि अभी पूरा जो भागवत है, भगवत गीता है, ये तत्वज्ञान है, तो सभी को तत्वज्ञान इजीली समझता नहीं है, परंतु भगवान के भक्त है जो उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल, समझने को योग्य बनाते हैं और समझाते हैं। अभी भगवत गीता हजारों 5000 साल से भगवत गीता है, परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता यथारूप बनाई है उसमें उन्होंने अपने तात्पर्य दिए हैं, वो पढ़ने की वजह से लोगों को अभी भगवत गीता समझ रही है, उसकी वजह से लोग भक्त बन रहे हैं। पहले भी काफी सारे भक्त बने होंगे, परंतु विशेष रूप से कलयुग में अभी के जो समय में कितने सारी भगवत गीताएं हैं, परंतु उससे ज्यादा लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आया। परंतु श्रील प्रभुपाद है, उन्होंने जो भगवत गीता लिखी है, जो तात्पर्य लिखे हैं, वह पढ़कर अनेकों अनेकों हजारों लाखों लोग भगवान के भक्ति के मार्ग में जुड़ गए। तो इस प्रकार एक्सपर्ट रहते हैं वे दोनों भी। अभी नारद मुनि का हम देखेंगे किस प्रकार उन्होंने पुरंजन की कथा बताई, एलेगोरिकल, एक इमेजिनरी कथा बताई इतनी अच्छी तरह से, और प्रचिनी भरी महाराज को प्रचार किया। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता भागवत में आत्म तात्पर्य देकर, अनेकों अनेकों प्रवचन देकर लोगों के हिसाब से, माने साइंटिस्ट को वो अलग बताएंगे, डॉक्टर को अलग बताएंगे, इंजीनियर को अलग बताएंगे, और उन्हीं का अनुसरण करते हुए अभी के जो प्रचारक है, श्रीमान गौरंग प्रभु रहेंगे, गौर गोपाल प्रभु रहेंगे, और हमारे यंग प्रीचर्स रहेंगे, ये सभी लोग भी उन्हीं का अनुसरण करते हुए लोगों का आईक्यू लेवल और उनका एक्सेप्टेबिलिटी समझकर उनको जिस प्रकार समझेगा इस भाषा में, इस रूप में, वो फिलोसॉफी, वो तत्वज्ञान, प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए, प्रिंसिपल्स को वैसे के वैसे रखते हुए वे प्रचार करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रचारक के ये चार गुण हमने देखे, एक तो सेल्फलेस एंड प्राइडलेस, एक तो वो निस्वार्थी है, दूसरा कंपैशनेट, उनको दूसरे के ऊपर दया आती है कि उनको इसलिए प्रचार करते हैं, तीसरा वे फेयरलेस होते हैं, वो किसी से डरते नहीं है, और चौथा है कि जो एक्सपर्ट इन प्रीचिंग कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स इन अ सिंपल वे। तो ये सब प्रचारक के गुणधर्म हैं। तो इसी प्रकार नारद मुनि ने पुरंजन महाराज की जो एलोगोरिकल कथा, माने काल्पनिक कथा, प्रचिनी भरी महाराज को बताई। आप में से बहुत से जनों को वो कथा पता रहेगी, परंतु रिवीजन के लिए और हमें भी आज के विषय में चर्चा आगे बढ़ाने के लिए हम उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। तो ये कथा में पुरंजन नाम के एक राजा होते हैं, और वे, उनका एक मित्र होता है बचपन से, मतलब ऑलवेज, दोनों हमेशा साथ में रहते थे, उसका नाम रहता है अनभिज्ञ, मतलब उसका मीनिंग ही ऐसा है कि अविज्ञाता, तो उसका नाम नहीं है, वही है। तो उनका एक फ्रेंड है, मित्र है, और वे है पुरंजन। ये दोनों हमेशा साथ में रहते हैं, मित्र है, बहुत अच्छे मित्र है। परंतु कुछ समय के बाद पुरंजन महाराज खोज में निकलते हैं कि मुझे कहाँ पे आनंद मिलेगा, मुझे आनंद, सबसे ज्यादा आनंद कहाँ पे मिलेगा। तो अनेकों शहर, नगर, गांव को भेंट देते हैं, ढूंढते हैं कि कहाँ पे मुझे आनंद मिलेगा। तो ऐसे ढूंढते 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 वे हिमालय के नीचे एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पे एक शहर उनको मिलता है, वो शहर का नाम है बट बेसिकली सिटी विथ 9 गेट्स, वो 9 दरवाजे वाला एक शहर होता है। वहां पे उनको लगता है कि हाँ, यहाँ पे बहुत ही अच्छा वातावरण है, यहाँ पे मुझे आनंद मिलेगा। और जैसे ही वे उस शहर में प्रवेश करते हैं, वहां पे एक राजमहल होता है, और वहां से एक राजकन्या या रानी, वहां से वो एक लेडी वहां से बाहर आती है, और वो बहुत ही सुंदर होती है, और वो तो सुंदर होती है, और उसके प्रोटेक्शन के लिए उसके साथ एक उस छात्र, मतलब एक छाते के रूप में एक 5 फन वाला नाग उसके उसके साथ रहता है, और उसके साथ ही साथ उसके 11 प्रिंसिपल बॉडीगार्ड रहते, 11 उनके बॉडीगार्ड रहते प्रिंसिपल महत्वपूर्ण, और उनके और 11 जनों के साथ भी हजारों लाखों बहुत से सैनिक रहते। तो ये सब पैराफ्रेनिलिया लेकर, ये सब को लेकर वो रानी या वो जो राजकुमारी है वो चलती है, और जैसे पुरंजन महाराज उस राजकुमारी को देखते हैं तो आकृष्ट हो जाते हैं, और उनको लगता है कि यह व्यक्ति है, इसके साथ मैं विवाह कर सकता हूँ और अपने जीवन का आनंद ले सकता हूँ। तो जैसे ही वो एक दूसरे से मिलते हैं तो पुरंजन महाराज उनको उनकी थोड़ी प्रशंसा करते हैं कि हे सुंदरी, आप बहुत ही सुंदर हो, और यहाँ पे आप क्या कर रही हो, आपका नाम क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, सब पूछते हैं। और भी वो जो देवी रहती है, वो जो रानी रहती है, राजकुमारी रहती है, वो भी कहती है कि मैं इस प्रकार यहाँ की राजकुमारी हूँ, रानी हूँ, और मैं तो केवल मेरा सुटेबल हस्बैंड ढूंढने निकली हूँ। तो ये मेरा तो इतना ही इंट्रोडक्शन है कि मुझे सुटेबल हस्बैंड चाहिए बस। तो दोनों का मिलाप जुलाप हो जाता है, तो दोनों को लगता है कि वी आर कंपैटिबल फॉर ईच अदर, कि हाँ हम विवाह कर लेते हैं। तो दोनों का विवाह होता है, फिर अनेकों वर्षों तक वे साथ में रहते हैं, अनेकों पुत्रों पुत्रियों को जन्म देते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, और काफी समय बीत जाता है इन सब चीजों में। और फिर एक जरा बोल के एक स्त्री रहती है, वो 85 ईयर्स उसका एज रहता है, लगभग 85 ईयर्स, उसको भी विवाह करना रहता है, और उसको विवाह करने के लिए कोई नहीं मिलता है। तो वो नारद मुनि के पास भी जाती है कि अरे आप मुझे मेरे साथ विवाह करोगे क्या? तो नारद मुनि बोलते हैं नहीं, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता। तो फिर उसको वो दूसरे के पास भेजते हैं, उसका नाम यवनराज नहीं और चंदवेग, वो चंदवेग के पास भेज देते हैं। हाँ, चंदवेग के पास तुम जाओ, उसके साथ विवाह कर पाओगे। तो चंदवेग के पास जाती है, तो चंदवेग ऑलरेडी वो बूढ़ा ही रहता है और ये भी बूढ़े रहते, तो वो बोलते कि अभी विवाह करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, हम ऐसे ही साथ में रहते हैं। और उनके फिर और 2 कलीग भी रहते हैं साथ में, एक भय और एक प्रज्वर, एक प्रज्वर रहता है कि और दूसरा भय। तो ये सब लोग 4 जन अभी इनका ग्रुप गैंग बन जाता है, और उसके साथ साथ पीछे उनके पिताजी भी रहते शायद काल। तो ये सब लोग अभी एक एक शहर कॉन्कर करते जाते हैं, अभी कैसे सिकंदर आया था, बीच बीच में ऐसे लोग आते हैं ना, तो वो एक एक शहर कॉन्कर करके दे जाते हैं, और अभी नंबर आता है अपने नौ द्वार वाला जो ये शहर है, यहाँ पे भी आ जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद वो पहले जैसे जरा जो है वो उस शहर में प्रवेश कर लेती है और अपना जो पुरंजन है उसके ऊपर अटैक कर लेते हैं, और पुरंजन को उसी समय समझता है कि अभी मेरा मृत्यु निकट आ गया है। और जब व्यक्ति का मृत्यु निकट आता है तब ये श्लोक सब शुरू हो जाते हैं, कि उनको याद आता है, अरे अभी मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, इनको कौन संभालेगा। हम कैलाश की भी कथा सुनते हैं ड्रामा में, सेम कथा है, और बहुत से हमारे जैसे लोगों की भी सेम कथा है, कि वो अंत समय में याद आता है कि अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं। भक्ति का तो याद नहीं आता है क्योंकि वो प्रैक्टिस ही नहीं है, तो याद आता है इन्हीं लोगों का जिनका सेवा जन्म भर किया है या सेवा लिया है, उनसे हम आकृष्ट हो गए, उनसे अटैच हो गए, तो उन्हीं के बारे में सोचते हैं। और फिर पुरंजन का मृत्यु हो जाता है, पुरंजन का ये पत्नी के बारे में ये जो श्लोक हमने पढ़े कि किस प्रकार मेरी पत्नी कैसे मेरे बच्चों का उदर भरण करेंगी, अकेली गृहस्थी कैसे संभाल पाएगी, ये सोचते सोचते उसका मृत्यु हो जाता है। और नेक्स्ट लाइफ में पुरंजन का फीमेल, उसको लेडीज का जन्म मिलता है, और विदर्भ राज में वो वैदर्भी नाम से वे जन्म लेती है। वहाँ पे भी वो उसका तो कॉन्शियसनेस वही था, तो वहाँ पे भी उसका विवाह हो जाता है। वहाँ पे कौन से राजा थे, मकर ध्वज, मलय ध्वज, मलय ध्वज राजा से उनका विवाह होता है। फिर मलय ध्वज राजा टाइमली रिटायरमेंट लेते हैं, वे इसमें जाते, वन में जाते, तपस्या करते हुए वे शरीर का त्याग कर देते हैं। वहां पे वापस ये जो पुरंजन था, जो कि अभी फीमेल हुआ है वैदर्भी, वो वहां पे विलाप करती रहती है, रोती रहती कि अरे मेरे पति चले गए, इस वन में मैं अकेली क्या करूं, मैं कैसे जीऊं, मैं भी इनके साथ चली जाती हूँ, तो इस प्रकार वो विलाप करती रहती है। तो वहां पे उसको प्रचार करने के लिए वापस एक ओल्ड ब्राह्मण वहां पे आता है, और वो उसको याद दिलाता है कि आप पिछले जन्म में पुरंजन थे, उस समय में भी आप अपने हस्बैंड सॉरी वाइफ से अटैच होने की वजह से आपको ये फीमेल का लेडीज का जन्म मिला है, और इस जन्म में भी आप अगर वही करोगी तो नेक्स्ट लाइफ में भी आप और पुरुष का जन्म मिलेगा, और यह चक्र चालू रहेगा। तो इसलिए नारद मुनि जो पहले हमने पढ़ा कि बताए कि जीवन का उद्देश्य है कि भगवान की प्राप्ति करना, और अगर हम कर्मकांडिक एक्टिविटी करते रहे तो कभी भी हम इस चक्र से मुक्त नहीं हो पाएंगे, हम इसी में अटके रहेंगे। तो इस प्रकार फिर वो ये सब कथा होने के बाद वापस प्रचिनी भरी महाराज पूछते हैं कि उनको इतना सुनने के बाद भी टच हुआ कि नहीं पता नहीं, पर वो पूछते हैं कि क्या इसका क्या है, मीनिंग क्या है। तो फिर नारद मुनि और उनको समझाते हैं, ये प्रीचर कभी ऐसे फर्स्टेड नहीं होते, अरे क्या है समझ ही नहीं रहे, हमारे कितनी भी बार भी बोला तो वो फर्स्टेड नहीं होते, वो वापस से समझाते। तो वापस से वो फिर समझाते कि ये पुरंजन क्या है, पुरंजन जीव है, फिर ये सिटी ऑफ नाइन गेट्स क्या है, ये शरीर है, नौ द्वार अपने शरीर को रहते हैं, फिर ये पुरंजनी जो लेडी थी वो कौन है, तो वो अपने डिजायर मटेरियल डिजायर से, फिर ये सॉरी बुद्धि है, और 11 उसके जो बॉडीगार्ड से 11 वो कौन है, तो फाइव पांच वर्किंग सेंसेस, फाइव दूसरे सेंसेस और एक मन, इस प्रकार ये 11 ये है। तो और अनभिज्ञ ये कौन है, तो ये परमात्मा है। तो परमात्मा हमें बता रहा है पहले से अपने साथ में, परंतु जब हम भौतिक इच्छाओं की पूर्तता में लग जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ परमात्मा है, हम वही चीजों पे फोकस करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसी में लगे रहते हैं, और अंत काल आ जाता है, और तभी हमको जिस जो हमारा कॉन्शियसनेस रहेगा उस प्रकार से अगला जन्म मिलता है। और वो उसको भी कितना शहर ढूंढने के बाद ये नौ द्वार का शहर मिला, तो उसी प्रकार 84 लाख स्पेसिस में घूमने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। और ये सब मिलने के बाद भी आकर उसको हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में गंवा दें तो क्या होगा? तो अगला जन्म उसको तो मिला, ह्यूमन फॉर्म तो मिला, तो ये भी गारंटीड नहीं है कि ह्यूमन फॉर्म ही मिलेगा। तो हमको चाहिए कि भगवान का भक्ति करना चाहिए। तो ये प्रचिनी भरी महाराज को नारद मुनि ने समझाया, श्रील प्रभुपाद ने हमको समझाया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कुछ बातें कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो पहले हमने चर्चा किया किस प्रकार प्रचारक के गुण हैं, कि वे सेल्फलेस रहते, प्राइडलेस रहते, फियरलेस रहते और लोगों को कंपैशनेटली प्रीच करते हैं और सिंपल करके लोगों को बताते हैं तत्वज्ञान। दूसरा देखा कि पुरंजन की कथा किस प्रकार नारद मुनि ने इनको बताई प्रचिनी भरी महाराज को, नहीं समझा तो वापस उसका डिटेल भी बताया। और अभी हम देखते हैं कि प्रभुपाद क्या लिखते हैं पर्पट में। एक श्लोक में वर्ड आता है अतद अरहणम, उसका मीनिंग है वन शुड नॉट बी ओवरली एंगेज्ड इन वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ फैमिली मेंबर्स कंट्रीमैन सोसाइटी एंड कम्युनिटी, नन ऑफ दिस विल हेल्प अ पर्सन टू एडवांस स्पिरिचुअली। श्लोक प्रभुपाद पर्पट में तात्पर्य में लिखते हैं कि अभी देखो गृहस्थ जीवन में पत्नी का सेवा करना, बच्चों का उधर निर्वाह करना, समाज के लिए कुछ कार्य करना, देश के लिए कुछ कार्य करना, ये जरूरी है। परंतु श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वन शुड नॉट बी ओवरली एंगेज्ड, अभी यही करते रहेंगे तो अच्छी बात नहीं, करना चाहिए, वो धर्म है, पति का धर्म है पत्नी की लिए कुछ सुविधा उपलब्ध करना, पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, बुरी बात नहीं है। परंतु वी शुड नॉट बी ओवरली एंगेज्ड, वही करते रहेंगे और अपना जो मूल स्वभाव है भगवान की भक्ति करना है वो अगर हम भूल जाएंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। तो उसी प्रकार ये फैमिली मेंबर्स, कंट्री मैन, सोसाइटी, हम इन सब का सेवा करते रहेंगे और अंत समय में ये सब लोग हमको मदद करने नहीं आ पाएंगे। नन ऑफ दिस विल हेल्प अ पर्सन टू एडवांस स्पिरिचुअली, ये सब चीज़ें हमको भक्ति में प्रगति करने के लिए मदद नहीं करेंगे। प्रभुपाद तात्पर्य में यही भी लिखते हैं कि अगर पति और पत्नी दोनों भक्त है, दोनों भगवान के अच्छे भक्त है और उनके घर का केंद्र भगवान श्री कृष्ण है, तो इस प्रकार अगर वे दोनों भगवान की सेवा के लिए एक दूसरे से अटैच है तो उनका प्रगति हो सकता है। परंतु केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए या एक दूसरे के भौतिक गुणों के लिए अगर हम एक दूसरे से अटैच है तो वे अपने पतन का कारण ही होगा। क्योंकि हम देखते हैं इस अर्थ में भी कि राजा पुरंजन की पत्नी वी भी बहुत ही अच्छी सदाचारी स्त्री थी, कि वो याद आ क्या लिखा था कि तब तक भोजन नहीं करती थी जब तक वह स्वयं नहीं खा लेता था, कितनी आज्ञाकारी पत्नी थी। तो ऐसी इतने आज्ञाकारी पत्नी है तो वो अटैच हो जाते हैं, पर अटैच नहीं होना चाहिए, ऐसा श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। नारद मुनि भी कहते हैं कि हमको चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखना चाहिए और उनके उनसे अटैच होना चाहिए, या अगर दोनों भक्त है तो एक दूसरे से अटैच है तो भी ज़्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि वे कृष्ण के केंद्र बिंदु कृष्ण हैं। आगे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं हरिम विना न स्त्रीम तरंती, वन कैन नॉट कॉन्क्वर डेथ विदाउट टेकिंग शेल्टर ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। अगर हमको मृत्यु के परे जाना है, जन्म मृत्यु के परे, तो हमको भगवान श्री कृष्ण का ही आश्रय लेना पड़ेगा, दूसरी कोई भी चीज या व्यक्ति हमें मदद नहीं कर पाएंगी। और भगवान का आश्रय या भगवान की भक्ति कैसे करनी है, या लिखते हैं कि इस तात्पर्य में भी हम या स्टोरी लाइन में हम देखते हैं कि किस प्रकार पुरंजन अंत समय में उसको स्मरण में, उसके पत्नी उसके स्मरण में थी इसलिए उसको फीमेल बॉडी मिला। तो हमको चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, अंते नारायण स्मृति ही। अगर ये होना चाहिए तो क्या करेंगे, तो हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या प्रभुपाद लिखते हैं कि लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। हमारी परीक्षा मृत्यु के समय है, परंतु हमको समय मिला है कि हमको प्रिपेयर करने के लिए। अगर अभी हम थोड़ा प्रिपेयर रहेंगे तो शायद अंतकाल में कुछ कर पाएंगे। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे व्यतीत तथा, अगर भगवान का जन्म और कर्म इनके बारे में हम सुनेंगे, अभी दामोदर महीना चालू है, कार्तिक मास चालू है, तो भगवान का दामोदर लीला कितना मधुर लीला है, तो भगवान की लीलाएं उनकी कथा ये सुनेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे उसमें मग्न रहेंगे, तो नैसर्गिक रूप से किसी भी समय अगर मृत्यु आया तो हमको वो भगवान के धाम लेके जाएगा। तो हमको चाहिए कि हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। अभी लास्ट एक महीने पूर्व पीछे एक हमारे डॉक्टर मित्र थे, 40 इयर्स उनका उम्र केवल 40 था, 40 साल था। वे स्वयं हृदय रोग तज्ञ, हार्ट के स्पेशलिस्ट थे और वे इंदौर में प्रैक्टिस करते थे, और उनको ही हार्ट अटैक आके हुए चल बसे। तो हम सोचने लगे, अरे क्या इतने जल्दी डॉक्टर होके अटैक आ गया गया पेशेंट। तो हम हमारी उसमें एक नॉन ड्यूटी एक हमारे मित्र डॉक्टर है, उनको बताया, देखो सर क्या हो गया, देखो इतना अच्छा डॉक्टर था, इसको ऐसा हो गया, 40 की उम्र में उसको अटैक आ गया, तो क्या कितना डिफिकल्ट है। तो वो डॉक्टर बोला कि वो नॉन ड्यूटी है हालांकि, पर अच्छा बात बताया, बोला कि डॉक्टर साहब हमको ऐसा जीना चाहिए कि आज का ये दिन या आज का ये समय हमारा आखिरी समय है, मृत्यु किसी भी समय आ सकती है, तभी हम जीवन में कुछ अच्छा कार्य करेंगे। वो उनका अलग कुछ अच्छा कार्य का डेफिनेशन रहेगा, परंतु हमारा तो है कि भगवान का भक्ति अच्छा करना चाहिए ताकि मृत्यु कभी भी आ सकता है। तो हमको रेडी, ऑलवेज प्रिपेयर, रेडी रहना चाहिए कि हाँ कि मृत्यु कभी भी आ सकता है, तो वो कॉन्शियसनेस में रहना चाहिए। आगे श्रील प्रभुपाद परपट में लिखते हैं 19 अगले श्लोक के, कि इफ अ हस्बैंड एंड वाइफ आर वेरी मच अटैच टू वन अनदर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दे विल बोथ बेनिफिट बिकॉज कृष्णा इज द सेंटर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। हमने इसका चर्चा किया कि अगर हमारे अस्तित्व का आधार ही कृष्ण है तो नैसर्गिक रूप से हम प्रगति करेंगे, परंतु अगर हमारे रिलेशन जो है हस्बैंड वाइफ का, उसका आधार अगर इंद्रिय भोग है तो नैसर्गिक रूप से हमारा पतन होगा। तो हाउ कैन अ फैमिली लाइफ बी कृष्णा कॉन्शियस। सॉरी ब्रह्मचारी भक्त के लिए थोड़ा ये अलग टॉपिक लगेगा, परंतु आप प्रचार में इसका उपयोग कर सकते हैं जो हम बता रहे हो। तो हाउ अ फैमिली लाइफ कैन बी कृष्णा कॉन्शियस, कि हमको गृहस्थ जीवन कैसे कृष्ण भावनामय बनाना है, उसके अलग अलग उपाय या मार्ग है। तो श्रील प्रभुपाद कुछ जगह पे कहते हैं कि फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, जो परिवार है जो साथ में भगवान को प्रार्थना करते हैं या भगवान का आरती पूजा करते हैं, वो अच्छे से साथ में रहते हैं। फैमिली दैट डाइन्स टुगेदर शाइन्स टुगेदर, जो साथ में प्रसाद लेते हैं उनका भी प्रगति होता है। और फैमिली दैट डांसेस टुगेदर एडवांसेस टुगेदर, भगवान के कीर्तन में जो डांस करते हैं साथ में उनका भी अच्छा प्रगति होता है। तो ये श्रील प्रभुपाद के कोट है, वी हैव टू ऐड कृष्णा फैक्टर इन ऑल थ्री थिंग्स, क्योंकि भौतिक जगत में भी ये चीजें करते हैं लोग। हाँ प्रेज टुगेदर साथ में, वो अभी दिवाली चल रहा है, लक्ष्मी पूजन साथ में करेंगे, दशहरे का पूजा साथ में करते हैं, परंतु उसमें कभी कभी कृष्ण केंद्र में नहीं रहते हैं। डाइंस होटल में जाते हैं, बाहर भी जाते हैं खाने के लिए, पार्टी करते हैं, रिलेशन बनते हैं, परंतु कृष्ण केंद्र में नहीं है। और डांस तो अभी गरबा बहुत लोगों ने रात रात मेहनत परिश्रम किया इसके लिए, परंतु अगर वो कृष्ण को केंद्र में रखते हुए भगवान के कीर्तन में अगर वे डांस करते तो उनका निश्चित रूप से आध्यात्मिक लाभ होता। तो केवल हमको क्या करना है, ये तो नैसर्गिक टेंडेंसी है सबका, डांस करना, प्रसाद खाना और प्रार्थना करना भी, परंतु इनको अगर इसमें अगर हम कृष्ण को ऐड करेंगे तो हमारा जो गृहस्थ जीवन है वो कृष्ण भावनामय हो जाएगा। तो इसके लिए भी और कैसे करें, रेगुलरली कमिंग टू टेम्पल, अगर हम नियमित रूप से मंदिर आते रहें तो ये सब चीज़ें होती है। मंदिर में आते भगवान रहते हैं, भगवान के सामने जाने के बाद कभी कभी नास्तिक लोगों का भी हाथ जुट जाता है, तो हम तो अस्तिक है, भगवान के भक्त हैं, तो हम अच्छे से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना, भगवान को क्या प्रार्थना करना चाहिए, पहले तो प्रार्थना है स्ट्रेंथ, भगवान हमें शक्ति दीजिए ये सब भौतिक जगत को झेलने के लिए, भौतिक जगत में रहते हुए माया से दूर रहने के लिए। श्रील प्रभुपाद एक जगह पे कहते हैं कि आई एम वरीड दैट माई डिसाइपल्स आर नॉट इनफ फियरफुल ऑफ माया, कि कभी कभी भक्तों को लगता है हम तो अभी माया के परे हो चुके हैं, पर ऐसा नहीं होता है, माया देवी बहुत शक्तिशाली है। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं कि मम माया दुरतया, कि मेरी में वो शक्ति, तो भगवान की शक्ति है इसलिए उसका बहुत शक्ति है, तो डिफिकल्ट टू कॉन्कर है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना कठिन है। तो हमको भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान हमें शक्ति दो कि हम माया से दूर रहे। दूसरा, कृपा के लिए प्रार्थना करना चाहिए, मर्सी, भगवान हमारे ऊपर आपकी कृपा बनाए रखे। और सबसे इंपॉर्टेंट है शेल्टर, हे वृंदावन बिहारी, हमको आपके चरणों में आश्रय दीजिए। आश्रय ये चीज़ है। भक्तिवेदांत हॉस्पिटल कुछ सालों पहले, बहुत सालों पहले, उस समय हम भी डॉक्टर भी नहीं थे, तो वो बंद हुआ था, 2-3 साल के लिए बंद था। और वहाँ के जो सीनियर डॉक्टर्स है वो सब लोग घर बैठे थे, क्या करेंगे, जॉबलेस। इतने बड़े डॉक्टर होके वो तुरंत दूसरा हॉस्पिटल क्लिनिक कुछ खोल सकते थे, परंतु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के आदेशानुसार वे वेट करते रहे। और महाराज ने कहा उनको कि देखो ये तो सब ठीक हो ही जाएगा, परंतु जीवन में कोई भी कठिनाई आए केवल एक चीज आप ध्यान में रखो, रिमेम्बर करो, ध्यान में रखो कि जीवन में कुछ भी कठिनाई आए, वृंदावन में वंशी भट के नीचे भगवान श्री कृष्ण बंसी बजा रहे हैं और हमको बुला रहे हैं। तो ये चीज जो है ये परमानेंट है, बाकी सब चीज टेम्पररी है। प्रॉब्लम्स आपके जो इतना बड़ा प्रॉब्लम चालू है, वो गिरिराज प्रभु बताते थे कि एक हम ऐसे एक टनल में घुस चुके थे कि जाते समय अंधेरा दिख रहा है और आगे लाइट दिख ही नहीं रहा है और कितना जाना है हमको पता ही नहीं। और ऐसे कठिन परिस्थिति में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने उनको मार्गदर्शन किया, उनको कहा कि हर 15 दिन में आप मिलो और केवल कृष्ण के बारे में चर्चा करो, मैनेजमेंट के बारे में चर्चा मत करो। तो ये सब चीज़ें वो करते रहे और वो तो नेचुरली फिर हॉस्पिटल चालू भी हुआ। अभी तो बहुत ही अच्छा और एक बिल्डिंग आ गया हॉस्पिटल का, परंतु कहने का आश्रय इतना ही है कि हमको भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए और वो लेने के लिए, वो भावना मन में तैयार होने के लिए भी हमको प्रार्थना करना चाहिए। तो जैसे हम मंदिर में आते हैं तो हमको दर्शन लेना चाहिए भगवान का, दर्शन के समय भगवान से 3 चीज़ों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। दूसरा चीज़ है मंदिर में आने के बाद भक्तों का संग लेना चाहिए। तो भक्तों के संग में भी खास करके गृहस्थों के बारे में हमने देखा है कि चर्चाएं गृहस्थ जीवन के बारे में होती है, प्रभु जी कैसा जॉब चल रहा है, कितना सैलरी है, बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन से स्कूल में होना चाहिए, उसके बारे में भी चर्चा होना, पर उससे भी ज़्यादा क्या है कि भगवान के बारे में चर्चा होना। जैसे महाराज ने उनको बताया, हमारे डॉक्टर सीनियर्स को, कि आप केवल कृष्ण के बारे में चर्चा करो 15 दिन में एक बार। तो ऐसा अगर हम मंदिर में आने के बाद भक्तों से मिलेंगे और भगवान के बारे में चर्चा करेंगे तो उसका लाभ होगा। तीसरा है सर्विस। मंदिर में आने के बाद हमको सेवा मिलती है, कुछ ना कुछ सेवा, किसी को बैकअप मिलेगा, किसी को ड्यूटीवरशिप मिलेगा, किसी को प्रवचन देने का सेवा मिलेगा, किसी को अनाउंसमेंट मिलेगा, तो जो मिला हो सेवा करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी भक्ति का भी व्याख्या करते हैं, डिवोशनल सर्विस, क्या है, प्रेममयी भक्तिमयी सेवा, है ना। भक्ति का अर्थ ही भक्तिमय सेवा बताया प्रभुपाद। केवल भजन कीर्तन तो इम्पोर्टेंट ही है, पर केवल भजन कीर्तन को ही इम्पोर्टेंस नहीं दिया इसलिए प्रभुपाद ने, उन्होंने कहा है कि उसके साथ सेवा करना जरूरी है। तो जैसे मंदिर में हम आते हैं तो हमको सेवा का भी लाभ मिलता है। और हरे कृष्ण महामंत्र का भी तो वही अर्थ है कि हे राधा रानी, हे कृष्ण, हमें आपकी सेवा में एंगेज करो। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि लव मीन्स टू प्लीज एंड प्लीज मीन्स टू सर्व। तो अगर हमको किसी से प्रेम है तो उसके लिए सेवा करना पड़ता है ना। तो अगर सेवा करेंगे तो वो आनंदी होता है सामने वाला व्यक्ति। तो इसीलिए भगवान को, अगर हमको भगवान के प्रति प्रेम जताना है तो भगवान के लिए हमको कुछ ना कुछ सेवा करना चाहिए। सेवा का अलग अलग रूप है, कोई परिश्रम करके सेवा कर सकता है, कोई मानसिक रूप से पूजा करके या भगवान का स्मरण करके भी सेवा कर सकता है, कोई धनराशि देके सेवा कर सकता है, अलग अलग रूप से सेवा है। तो कोई ना कोई सेवा कुछ ना कुछ प्रकार से हमको भगवान की करनी चाहिए। और सबसे अंत में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, प्रसाद। तो मंदिर में आने के बाद हमको प्रसाद भी मिलता है। तो अगर गृहस्थ जीवन में हम मंदिर में आएंगे संडे को भी, तो भी हमारा ये सभी चीजें हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, भक्तों का संग मिलेगा, सेवा मिलेगा और प्रसाद भी मिलेगा। अगर कुछ लोग है कि बहुत ही दूर रहते हैं, हाँ मंदिर से 200 किलोमीटर दूर, ऐसा भारत में तो पॉसिबल ही नहीं, इतने पास पास मंदिर है अपने, परंतु बाहर देश के लोग के लिए ऐसा हो सकता है, परंतु यहाँ पे भी रहने के बाद अभी हम भी पास में ही रहते, फिर भी हफ्ते में एक ही दिन आ पाते हैं, तो बाकी के दिन के लिए कुछ तो एंगेजमेंट चाहिए। ये सब 4 एक्टिविटी हमको भी ABCD करना पड़ता है, एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग, ये सब। तो इसके लिए हमारे घर पे हम विग्रह ला सकते हैं, DT वर्शिप एट होम, ये करेंगे तो भी हमारा जीवन कृष्ण भावनामय हो जाएगा। DT वर्शिप में अपने सेंसेस, ये जो पुरंजन की कथा में हमने देखा कि मन मन के जो इतने सारे सोल्जर्स थे ना, वो उसकी डिजायर्स थी, हजारों लाखों डिजायर्स है। मन जो है वो कभी भी तृप्त नहीं होता है, किसी भी चीज से तृप्त नहीं होता है, और आनी और आनी और बोलता रहता है। तो मन को तृप्त करने का एक ही मार्ग है कि भगवान के सेवा में अगर उसको एंगेज करेंगे तो हो जाता है। तो हमको चाहिए कि घर में विग्रह लाने चाहिए। विग्रह लाएंगे तो उनका सेवा करेंगे तो मन और इंद्रिय दोनों भगवान की सेवा में लगाएंगे। तीसरा है इनवाइटिंग साधुस टू हाउस एंड सर्विंग देम टुगेदर। भगवान के भक्त है, उनको घर पे बुला के उनको सेवा करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा। श्रील प्रभुपाद का उदाहरण है, गौर मोहन डे उनके पिताजी हमेशा वैष्णवों को साधुओं को घर पर बुलाते थे, उनको प्रसाद खिलाते थे, और जब साधु संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते थे तो वे कहते थे केवल मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि वो राधा रानी का अच्छा भक्त बने। तो इस प्रकार हमको चाहिए कि वैष्णवों को साधुओं को घर पर बुलाकर उनका सेवा आदर आतिथ्य करना चाहिए। और चौथा है गिविंग टाइम एनर्जी एंड मनी टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी। सेवा में ये आता है कि हमारा कैपेसिटी जितना है, अभी हर कोई को नहीं कि वो रोज मंदिर आ सके, या बहुत भगवान का सेवा जैसे मंदिर में जिस स्टैंडर्ड से होता है उतना घर पे नहीं कर पाएंगे, परंतु जितना पॉसिबल है मैक्सिमम, क्या लिखा है, टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी, अपनी जो कैपेसिटी उसका बेस्ट देना चाहिए। टाइम एनर्जी एंड मनी इतना अगर भगवान की सेवा में हम लगाएंगे तो लाभ होगा। पांचवा लास्ट है कि टेकिंग रेगुलर गाइडेंस फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर काउंसिलर। अभी भक्ति है, अगर हम अकेले करेंगे ना तो भटक जाएंगे। एक वो भी श्लोक है कि एकांत की हरेर भक्ति उत्पात है वही कल्पते, है ना। अकेले अगर कोई सोचता है कि कलयुग में कि मैं अकेला निर्जन भजन करूंगा तो मन का भास है, या उसको माया देवी का ही वो अटैक है समझ सकते हैं आप, क्योंकि अकेला भक्ति करना पॉसिबल नहीं है। भक्तों के संग में ही भक्ति हो सकती है। और हमको चाहिए कि हमेशा कोई सीनियर भक्त का मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए। तो ऐसा अगर हम करेंगे, स्पिरिचुअल मास्टर या काउंसिलर, उनके रिप्रेजेंटेटिव, इनके संपर्क में हम अगर हमेशा रहेंगे तो नैसर्गिक रूप से हमारी भक्ति में प्रगति होगी। अगर हम कभी मार्ग भटक रहे, कुछ गलत कर रहे, तो वे हमको मार्ग पे लाएंगे। जैसे नारद मुनि ने प्रचिनी भरीषि को लाया, श्रील प्रभुपाद ने इतने वैष्णवों को लाया, और अभी सभी वैष्णव हम सबको पद 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 मार्गदर्शन करते हैं। और तो जैसे हमने पहले बताया कि लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ एग्जाम, वॉट एवर वी प्रैक्टिस थ्रू आउट आवर लाइफ वी हैव टू डू द बेस्ट इन एग्जाम। अगर हम जीवन भर इन सब प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, जप करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान के बारे में चर्चा करेंगे, तो नैसर्गिक रूप से मृत्यु के समय हमको भगवान का स्मरण होगा और हम भगवान के धाम चले जाएंगे। और प्रिंसिपल क्या है, अलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। अगर हमने ये किया कि हमेशा भगवान का स्मरण किया, कभी भी भगवान को भूले नहीं, तो वही होगा। भगवद गीता में श्लोक है, यम यम वापी स्मरण भाव त्यजन देते कलेवरम। अगर शरीर त्याग करते समय जो हमारा भाव रहेगा, जो हमारा चेतना रहेगा, उसी प्रकार हमें अगला जन्म मिलेगा। तो हमको चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का स्मरण रहे और हम भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में चले जाए। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ टिप्पणी देनी है, बता, कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा।